मानव मानव, अरे उठो बेटा, हरिद्वार आ गया बेटा, उठो।
पापा ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग हरिद्वार कुछ ज्यादा जल्दी पहुंच गए हैं।
मानव तूने बस में अच्छी नींद ली, इसलिए तुझे 4 घंटे का लंबा सफर भी जल्दी लग रहा है।
अरे दीदी आपसे किसने सोने को मना करा था, आप भी सो जाते ना। वैसे आप क्या रात को तारे गिन रही थी?
मानव पिष्टी आज हम हरिद्वार घूमने आए हैं, आज तो कम से कम तुम दोनों झगड़ा मत करो।
अरे कहा मम्मी, बिना लड़ाई के इनका खाना हजम नहीं होता।
आज तो हरिद्वार घूमने में इनका खाना हजम हो ही जाएगा।
पहले तो नदी में नहाएंगे और फिर घूमेंगे।
कितने दिनों बाद कितना पानी देखा है।
सृष्टि कल कल बहता पानी इस स्थान की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है ना।
अरे बच्चों पानी की कल कल की आवाज सुनने को भी कान तरस गए थे।
हाँ और इतना शीतल स्वच्छ पानी, ताजी हवा शहर में कहाँ मिलती है।
वसुधा अब सिर्फ तारीफ करने से काम नहीं चलेगा, नहाना भी होगा।
पापा हम यहाँ पे कैसे नहाएंगे, यहाँ तो पानी का भाव कितना तेज है।
हाँ मानव नदी में नहाना मत, फिर पानी के साथ बह गया तो।
मानव को डर आ रही है, डरो मत, मैं हूँ तेरे साथ।
विवेक पहले हम लोग नहा लेते हैं, तब तक तुम सामान का ध्यान रखना।
ठीक है मैं यही हूँ, आप फिर नहा लीजिए।
अब मानव अब तुम मेरे साथ आओ, सृष्टि तुम मम्मी के साथ रहो।
चलो
पापा एक मिनट रुकिए, मैं नदी में विसर्जन के लिए मूर्ति और फूल आया हूँ।
मानव ये मूर्ति और फूल कहाँ से लाया तुम?
पापा वो मेरा दोस्त है ना राजेश, उसने ये मूर्ति नदी में बहाने के लिए दी थी।
वाह दोस्त ने मूर्ति दी और तू ले आया।
अरे दीदी पापा ये तो कहते हैं कि सबका काम करना चाहिए।
करना चाहिए लेकिन अच्छा काम।
लेकिन पापा मूर्ति विसर्जन में क्या बुराई है, देखो ना यहाँ पे कितने सारे लोग मूर्तियों को और फूल पत्तों को नदी में बहा रहे हैं।
चल चल मानव चल, वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले नहा ले। चल चल फटाफट डुबकी लगाना।
अरे पापा ये पानी तो बहुत ठंडा है पापा।
ठीक है ठीक है ठीक है, बाहर निकल कर नहाने के लिए कह देना। मजा आया
मजा तो आया, लेकिन मानव ठंडी क्या है
मानव क्या ख्याल है, अब कुछ गर्मा गर्म पी ले।
हाँ मम्मी फटाफट कुछ पी लेते ना, मुझे बहुत डर लग रही है।
बाजार की तरफ चलते हैं।
भैया मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि नदी में मूर्ति और फूल डालने से पापा इतने क्यों नाराज हो गए।
मानव मूर्ति विसर्जन से जल प्रदूषित होता है बस इसलिए।
पर भैया एक दिन आप ही तो कह रहे थे कि पृथ्वी के सारे पदार्थ यहीं से उत्पन्न होते हैं और फिर यहीं पर खत्म हो जाते हैं, फिर मूर्ति विसर्जन से जल कैसे प्रदूषित होगा।
वाह
मानव मुझे तो आज मालूम हुआ कि तू विवेक भैया की बातों को पत्थर की लकीर की तरह मानता है।
अपने से बड़े लोगों की बातों पर ध्यान तो देना ही चाहिए ना,
चाहे वो गलत हो तब भी।
मम्मी का ऐसा कहना तो नहीं था।
अब बच्चों किसी की बात पर सोच समझ कर ही ध्यान देना चाहिए, जल्दी जल्दी बढ़ते जाओ।
पापा ये बात तो सही है ना कि सूरज की ऊर्जा को छोड़कर पृथ्वी पर कोई भी पदार्थ बाहर से नहीं आता, सभी पदार्थ यहीं बनते हैं और यहीं समाप्त हो जाते हैं।
मानव तो यही कहना चाहता है ना कि पृथ्वी के निर्माण के समय यहाँ केवल चट्टानें ही उपस्थित थी, जो बाद में विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मिट्टी में बदल गई। ठीक।
और बच्चों, पृथ्वी के विभिन्न पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं।
हाँ, प्रकृति में विभिन्न पदार्थों के चक्रण की ये व्यवस्था लाखों करोड़ों सालों से चली आ रही है।
तो भैया, फिर मूर्ति को पानी में डालने से क्या फर्क पड़ता है? मूर्ति पानी में तो गल ही जाएगी।
मानव,
मूर्ति ऐसे कैसे गल जाएगी? दीदी, मूर्ति पृथ्वी पर उपस्थित किसी पदार्थ से ही तो बनी है ना, फिर भला पानी में क्यों नहीं जलेगी?
लेकिन मानव, पृथ्वी केवल उन्हीं पदार्थों को अपघटित या उनके मूल रूप में परिवर्तित करती है जिन्हें केवल प्रकृति ने बनाया है।
भैया, प्रकृति ने मानव को बनाया और मानव ने मूर्ति को, तो देखा जाए तो प्रकृति भी मूर्ति के बनने में कहीं ना कहीं तो शामिल है ना? लेकिन दीदी, मैंने तो कोई मूर्ति नहीं बनाई, वो मूर्ति तो मेरे दोस्त ने दी थी।
अरे मानव, सृष्टि तेरे अकेले की नहीं, वो तो सारे मानव समाज की बात कर रही है, समझा? और मूर्ति के साथ लगी सजावटी प्लास्टिक, वो तो इंसानों ने ही बनाई है ना। और अब तो मूर्ति निर्माण में कृत्रिम रंगों और प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेड, कैडमियम जैसे हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है जो जल को प्रदूषित करते हैं।
ये तो मैं समझ गया कि मूर्ति को नदी में डालने पर पानी प्रदूषित होगा, लेकिन नदी में फूल पत्ते डालने से क्या असर पड़ेगा? फूल पत्ते तो प्रकृति की रचना है।
मानव, ये तो तू सही कह रहा है कि फूल पत्ते प्रकृति की रचना है, लेकिन तूने नदी पर देखा नहीं, लोग फूल पत्ते पॉलिथीन में भरकर लाते हैं और फूल पत्तों के साथ पॉलिथीन भी पानी में डाल देते हैं। भला पॉलिथीन तो प्रकृति ने नहीं बनाई ना?
देखो मानव, इंसानों ने ही प्लास्टिक जैसे कुछ ऐसे तत्व बनाए हैं जिनका प्रकृति में विघटन नहीं हो पाता। यानी प्लास्टिक जैसे तत्व एक बार बन जाने पर आसानी से नष्ट नहीं होते।
और बच्चों, प्रकृति ने किसी भी ऐसे पदार्थ की रचना नहीं की जो नष्ट ना। लेकिन मानव के द्वारा ईजाद प्लास्टिक के निपटारे की प्रकृति में अभी कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।
बिल्कुल, ये तो सही है। किसी भी पदार्थ के विघटन में एक निश्चित प्रणाली काम करती है और इस प्रणाली के विकसित होने में सदियां लग जाती हैं। तो क्या प्रकृति में प्लास्टिक के विघटन की कोई प्रणाली मौजूद नहीं है?
है तो सही, पर अभी पूरी तरह नहीं। कुछ जीवाणु है जो प्लास्टिक को अपघटित कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। और जब तक पहला प्लास्टिक का ढेर अपघटित होता नहीं, तब तक नया आ जाता है। इसीलिए तो धरती पर प्लास्टिक का ढेर बढ़ता जा रहा है।
अच्छा, तभी नदी के किनारों पर भी पॉलिथीन का ढेर लगा हुआ था।
मानव, पॉलिथीन के ढेर से नदी का किनारा कितना गंदा लग रहा था।
हाँ।
देखा था ना?
हाँ मम्मी। लेकिन भैया, आप तो कहते रहते हैं कि प्रकृति में अनेक चक्र चलते रहते हैं जो निरंतर विभिन्न पदार्थों को बनाते और नष्ट करते हैं। फिर प्रकृति में पॉलिथीन को ठिकाने लगाने की कोई सही सही व्यवस्था क्यों नहीं है?
मानव, ये जरूरी नहीं कि प्रकृति में किसी भी नए पदार्थ के विघटन की व्यवस्था हो ही।
प्रकृति में लकड़ी, कागज जैसे जैव अपघटनीय पदार्थों का विघटन तो जल्दी हो जाता है, लेकिन पॉलिथीन के विघटन में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। भैया, ये जैविक पदार्थों का अपघटन आसानी से संभव क्यों है?
मानव, इन पदार्थों का निर्माण प्राकृतिक क्रियाओं से ही होता है, और दूसरी तरफ प्रकृति ने बैक्टीरिया, फंगस, दीमक और लाखों प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीवों की व्यवस्था की है जो लकड़ी, पत्तों, कागज को चट कर जाते हैं और उन्हें पुनः मूल तत्वों में बदल देते हैं, और ये सूक्ष्म जीव ही मरखप कर मिट्टी में मिल जाते हैं।
पापा, मैंने तो ये भी पढ़ा है कि लाखों वर्ष पूर्व समुद्री तल या जमीन में दबे जीवों से ही जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ है।
और पेट्रोल, डीजल, कोयला, मिट्टी का तेल और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन का ही तो उदाहरण है।
बिल्कुल,
इन जीवाश्म ईंधनों का निर्माण लाखों वर्षों के दौरान जैविक पदार्थों और जीवों के अपघटन से होता है। आपकी जो पत्नी हूँ।
तो इसका मतलब हमारे द्वारा आज उपयोग किया जाने वाला ईंधन लाखों वर्षों पूर्व समुद्रों या जमीन में दबे जीवों का ही बदला रूप है ना?
हाँ मानव, बिल्कुल ठीक। मृत जीवों के मिट्टी में दबने से न सिर्फ ईंधन ही प्राप्त होता है, बल्कि उनमें उपस्थित विभिन्न पोषक तत्व पेड़ पौधों के माध्यम से पुनः चक्रित होते रहते हैं।
अच्छा।
और बच्चों, प्रकृति में पत्तों, कागज का पुनः चक्रण भी इसी प्रकार चलता रहता है।
हाँ उसी प्रकार चलता रहता है जिस प्रकार हम चल रहे हैं। अब तक तो हम भी हरिद्वार की चक्कर ही लगा रहे हैं। मैं तो थक गई, कहीं बैठ कर नाश्ता कर लिया जाए। मैं इतनी मेहनत से बना कर लाई हूँ।
वैसे मम्मी आप घर से क्या बना कर लाए हो?
मैं बेसन के लड्डू और नमकीन और साथ में बिस्कुट है ही।
अच्छी बात है भाई, अब हमारे माना को भी भूख लग रही है
बहुत जोर से।
और क्या भाई, सब्र की कोई कोई हद होती है। तो बच्चों देर किस बात की, सामने वाली पार्क में चलकर बैठ
जाओ। हाँ,
हाँ, हाँ, और वो सामने चाय वाला भी उसे
अरे वाह, यहाँ पर पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर पक्षी बैठे हैं ना। मानस यहाँ पक्षी ही नहीं गुलाब के फूल भी कई रंगों में हैं।
हाँ सृष्टि, यहाँ तो गुलाब की काफी किस्में हैं।
मानव तुम्हें पता है कि इन फूलों की सुंदरता में भी अनेक जीवों का योगदान है।
वो कैसे पापा?
मानव ये तो तुम्हें पता ही है कि सजीव को जिंदा रहने और अपने विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
हाँ हाँ ये तो मुझे पता है कि हम बिना खाए पिए जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि खाने पीने से ही तो हमारे शरीर को विभिन्न पोषक तत्व मिलते हैं। हनी जरा लड्डू देना।
निकाल रही हूँ बेटा।
और माना खाने से मिले ये विभिन्न पोषक तत्व हमारी शारीरिक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं।
हाँ भाई हमारे लिए भी आवश्यक है। तो हमें तो ठीक इसी प्रकार बच्चों पेड़ पौधों को भी विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
पापा पेड़ पौधे इन पोषक तत्वों को हवा मिट्टी और पानी द्वारा ग्रहण करते हैं ना?
हाँ बेटी, हवा मिट्टी और पानी द्वारा ही पेड़ पौधे अपने विकास के लिए आवश्यक विभिन्न तत्वों को प्रकृति से प्राप्त करते हैं।
पापा ये तो मैं भी जानता हूँ कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस द्वारा लेते हैं।
और लड्डू के साथ साथ ये भी जानो मानव कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा पेड़ पौधों को अपने विकास के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता भी होती है जिसके लिए वो मिट्टी और जल पर निर्भर रहते हैं।
और मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध बनाने में मिट्टी में दबे अपघटित पदार्थों जैसे पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियां और मृत जीवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
तो इसका मतलब पोषक तत्व पाकर पेड़ पौधों और जीवों का विकास होता है और फिर इनके मरने पर इनमें उपस्थित पोषक तत्व वापस धरती में मिल जाते हैं और फिर से नए पेड़ पौधों और जीवों का विकास होता रहता है ना?
हाँ तो मानव प्रकृति में जीवन मरण का ये चक्र चलता रहता है
और इस प्रकार प्रकृति में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का चक्रण होता रहता है।
लेकिन भैया समुद्रों में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कहाँ से आते हैं?
मानव तुम्हें ये तो पता ही होगा कि धरती की कई नदियाँ समुद्रों में गिरती हैं।
हाँ भैया हर साल इन नदियों द्वारा समुद्र में पानी की विशाल मात्रा लेके जाई जाती है। मानव गंगा यमुना और नर्मदा जैसी सभी बड़ी और अनेक छोटी नदियाँ धरती के विभिन्न तत्वों को भी अपने साथ बहाकर समुद्र में मिलाती हैं।
और बच्चों इन तत्वों में खनिज पदार्थ और अनेक पोषक तत्व शामिल होते हैं।
और मानव ये सभी तत्व नदियों द्वारा समुद्र में मिल जाते हैं।
नदियों द्वारा समुद्र में पहुंचाए गए इन तत्वों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
वो कैसे पापा?
मानव ये खनिज तत्व समुद्री जीव जगत की पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं।
इस प्रकार समुद्रों को भी पोषक तत्वों की मात्रा ठोस भूमि से ही मिलती है।
हाँ।
चाहे वो समुद्र के किनारे हो या समुद्री तल।
भैया जब समुद्रों का क्षेत्रफल धरती से 3 गुना है तो ये तो स्वाभाविक ही है कि धरती की अपेक्षा समुद्र में जीवों की संख्या अधिक होगी।
हाँ मानव समुद्र में निवास करने वाले जीवों की संख्या धरती पे समस्त जीवों से बहुत अधिक है।
समुद्र के अनेक जीव जैसे कोरल रीफ,
शैवाल, स्पंज और मछलियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं।
हाँ, मछलियाँ तो अनेक लोगों का प्रिय भोजन है।
फिर भोजन,
अरे भोजन भोजन भोजन।
तो बच्चों, समुद्र से निकाली जाने वाली मछलियाँ लाखों लोगों का पेट भरती हैं, और धरती पर जीवन का आरंभ समुद्र में शैवालों की उत्पत्ति से ही तो हुआ है। पहले पहल इन शैवालों से ही ऑक्सीजन की बहुत सारी मात्रा वायुमंडल में पहुंची।
तो इसका मतलब धरती से समुद्र में गए पदार्थ रूप बदलकर धरती पर वापस आते रहते हैं।
वाह मानव, तुमने बात बड़ी जल्दी समझ ली।
हाँ, भोजन पेट में गया तो अकल काम आ गई। मानव, एक बात और याद रखना कि समुद्र और वातावरण दोनों में विभिन्न तत्वों की आपूर्ति में धरती की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।
पापा, समुद्र की बात तो समझ में आती है, लेकिन वातावरण जिसमें वायुमंडल भी शामिल है, उसमें विभिन्न तत्वों और गैसों की उपस्थिति में धरती का कोई प्रभाव हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आती।
बेटा मानव, जब तक अपनी समझ का दायरा थोड़ा बढ़ाओगे नहीं, तब तक साधारण बातें भी तुम्हारी समझ में आएंगी नहीं।
कौन सी साधारण बात मम्मी?
मानव, तुम अभी मम्मी का कहना नहीं समझे।
अरे दीदी, आप ज्यादा समझदार हो तो आप ही समझा दो ना।
मानव, समझदार बनने का दिखावा तो हमेशा तुम ही करते हो।
हाँ, और ज्यादा समझदारी में नुकसान भी तो मानव का ही होता है।
जाने दो मानव, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ।
हाँ।
देखो, तुम वायुमंडल की कोई दो गैसों के नाम बताओ जिनका स्रोत पौधे हो।
दो गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड।
वेरी गुड। अब ऑक्सीजन पेड़ पौधों से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड जीवों की श्वसन क्रिया के दौरान मुक्त होती है। और हाँ, रात को पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं।
हाँ मानव, इन गैसों के और भी कुछ स्रोत हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तुम ये बताओ कि पेड़ पौधे और जीव जंतु कहाँ रहते हैं?
अरे इतनी सीधी सी बात, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। अधिकतर पेड़ पौधे और जीव धरती पर जल में रहते हैं।
वैसे मानव, तुम भी अभी बच्चे ही हो, तुम विवेक भैया की उम्र तक आने पर ही बड़े कहलाओगे।
वैसे सृष्टि, बेटे बेटियां कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, माता पिता की नजर में हमेशा बच्चे रहेंगे, जैसे मेरा विवेक।
अब ये बात तो सही है, लेकिन जब बच्चे अपना और समाज का अच्छा बुरा समझने लगे तो दुनिया की नजरों में तो वो बड़े ही समझे जाएंगे भाई।
हाँ पापा, थोड़ी थोड़ी बातें तो मैं भी समझने लगा हूँ। जैसे अधिकतर पेड़ पौधे और जीव धरती और जल में रहते हैं, तो वायुमंडल की गैसों का संबंध भी तो धरती से ही होगा।
हाँ, देखो बड़ा हो गया।
वाह, सच में बड़े हो गए। बिल्कुल ठीक समझे तुम, हमारे वायुमंडल में अधिकतर गैसों की आपूर्ति धरती से ही होती है।
बच्चों, पृथ्वी के जन्म के समय ये धरती एक आपका गोला ही तो थी, महासागर और वायुमंडल तो बाद में बने।
पर्यावरण और समुद्र में तत्वों की आपूर्ति से ठोस धरती का महत्वपूर्ण संबंध है।
वाह, ये अच्छी बात है कि मानव को ये बात जल्दी समझ आ गई।
तो क्या सृष्टि, तुमने मेरे मानव को बुद्धू समझ
लिया?
बुद्धू नहीं मम्मी, मानव तो सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है।
सृष्टि अभी तो हंस लो, लेकिन ये मत भूलो कि सुपर कंप्यूटर को बनाने वाला भी कोई मानव ही था। हो सकता है कल हमारा मानव भी सुपर कंप्यूटर बना ले।
बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, मेरा मानव हीरा है, हीरा, इसे कोई पार्क ही पहचान सकता है।
हाँ मम्मी, कभी कभी मिट्टी में भी हीरे मिल जाते हैं।
है? मिट्टी में हीरे?
हाँ मानव, हीरे तो जमीन से ही निकाले जाते हैं। अब ये बात और है कि उन्हें चमकाने का काम बाद में किया जाता है।
हाँ मानव, हीरा कार्बन का ही तो एक रूप है, जिसका निर्माण धरती के उच्च ताप और दाब के कारण होता है। कोयला और हीरा दोनों कार्बन से ही बने होते हैं, बस इनकी संरचना में अंतर होता है।
अरे वाह, ये तो चमत्कार है।
मानव बेटा, हीरे का बनना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्राकृतिक क्रियाओं का परिणाम है।
जो भी हो मम्मी, मेरे लिए तो ये चमत्कार से कम नहीं है। जहाँ हीरा इतना कीमती होता है, वही कोयला कितना सस्ता है।
अरे मानव, प्रकृति की नजर में कोई वस्तु सस्ती या महंगी नहीं होती। और रही हीरे के बनने की बात, वो तो इस बात पर निर्भर है कि किस हालत में कार्बन के अणु आपस में कहाँ जुड़े हैं, यानी हीरे का बनना कार्बन के परमाणुओं की विशिष्ट संरचना पर निर्भर करता है।
चलो मानव, इसी बात पर तुम्हें कार्बन चक्र के बारे में बताते हैं।
कार्बन चक्र? पापा ये कौन सा चक्र है?
अरे मानव, ये पृथ्वी पर चलने वाले विभिन्न चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण चक्र है।
महत्वपूर्ण? लेकिन वो क्यों?
क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित ही है। कार्बन एक ऐसा परमाणु है जो विभिन्न तत्वों के साथ मिलकर अन्य यौगिकों का निर्माण करता है, जिसे वो बड़े बड़े अणु बनाते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है।
बच्चों, ये तो तुम्हें पता होगा कि पृथ्वी पर कार्बन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाला प्रमुख तत्व है।
पृथ्वी ही नहीं, कार्बन तो पूरे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में मिलने वाले तत्वों में शामिल है।
पृथ्वी पर कार्बन जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल सभी स्थानों पर मिलता है।
पापा, हमारे शरीर में भी तो कार्बन की मात्रा करीब 15-18% होती है, ऐसा मैंने किताब में पढ़ा था।
बहुत अच्छे। और बेटा, कार्बन हमारे ही नहीं सभी जीवों के शरीर में पाया जाता है।
अच्छा?
पृथ्वी पर जीवन ही कार्बन आधारित है।
और जीवों की श्वसन क्रिया और अपघटन से प्रकृति में कार्बन की ये मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त होती है।
लेकिन जीवों में कार्बन का स्रोत क्या है?
मानव, ये तो तुम्हें पता ही है कि सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं।
हाँ, तभी तो वो अपना भोजन बना पाते हैं।
हाँ।
मानव, फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पाद जीव हैं, यानी अन्य जीव अपने भोजन के लिए इन्हीं पर आश्रित होते हैं। हाँ दीदी, हम ही नहीं बल्कि अन्य सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर है।
और मानव, इस प्रकार पेड़ पौधों से कार्बन तत्व अन्य जीवों में भी पहुँच जाता है।
हाँ मानव, और मानव, इसके अलावा कार्बन के अणु की अन्य तत्वों के अणुओं के साथ मिलकर नया यौगिक बनाने की प्रवृत्ति के कारण ये अनेक पदार्थों में उपस्थित रहता है।
विवेक भैया, ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाओं से भी तो कार्बन की बहुत मात्रा निकलती है।
बिल्कुल ठीक सृष्टि, और जीवाश्म ईंधनों के दहन से भी वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ती है।
तब तो पृथ्वी पर कार्बन तत्व की मात्रा बढ़ती ही जा रही होगी।
ऐसा नहीं है मानव, प्रकृति कार्बन चक्र की मदद से इसकी मात्रा में संतुलन बनाए रखती है।
हाँ, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की विशाल मात्रा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा समुद्र भी तो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अवशोषित करते हैं।
यही तो कार्बन चक्र है, जिसमें कार्बन की मात्रा विभिन्न रूपों में बदलने के बाद भी प्रकृति में स्थिर रहती है।
बिल्कुल सही। और प्रकृति में कार्बन चक्र की भांति ऑक्सीजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र भी चलते रहते हैं। इनसे पृथ्वी पर विभिन्न तत्वों का चक्रण होता रहता है।
अरे बाप रे, इतने सारे चक्र, मुझे तो इनका नाम सुनकर ही चक्कर आने लग गए। मानव, जब नाम सुनकर ही तेरी ये हालत हो रही है तो सोच प्रकृति कैसे इन सब चक्रों में संतुलन बनाए रखती है।
बच्चों, प्रकृति के ऐसे अद्भुत संतुलनों के कारण ही तो हमारी पृथ्वी पर जीवन मुस्कुरा रहा है।
तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है बच्चों कि हम इन नाजुक संतुलनों से छेड़छाड़ ना करें।
बिल्कुल सही।
पापा, अब मैंने तो सोच लिया है कि मैं पॉलिथिन का उपयोग कम से कम करूंगा, और हाँ, अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने को कहूंगा।
तो प्रकृति के अद्भुत नजारों का हम आनंद लें और एक बार फिर चलें नदी के किनारे, है ना, और वहाँ आप नहाएंगे। मानव जी, आइए आइए,
एक बार, एक बार।